वहीं दूसरी तरफ राजमहल में पल्लवी और नरेंद्र दोनों ही काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उन्हें अभिनव के लिए अभी तक कोई भी लड़की नहीं मिली थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर अभिनव की शादी नहीं हुई तो उनका पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। उन दोनों को इतना परेशान देखकर अभिनव मन ही मन बड़ा खुश हो गया था, क्योंकि वो भी सिर्फ उन दोनों की वजह से ऐसे ही किसी भी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। शाम का वक्त, अभिनव सीधे पल्लवी और नरेंद्र के रूम में गया। उसे वहां देखकर नरेंद्र ने पूछा, क्या बात है अभिनव, आप यहां हमारे कमरे में क्या कर रहे हो? अभिनव ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, मैं देख रहा हूं कि पिछले 2-3 दिनों से आप लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही है ना? अभिनव की ये बात सुनकर पल्लवी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, लेकिन तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम कहीं ना कहीं से किसी लड़की को तो ढूंढ लेंगे, क्योंकि ये शादी होना बहुत जरूरी। पल्लवी बोल ही रही थी कि अभिनव ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, अगर मैं आप दोनों की ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं तो कैसा रहेगा? नरेंद्र और पल्लवी दोनों ही उसकी बात सुनकर बिल्कुल शॉक हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या कहना चाह रहा है अभिनव। नरेंद्र उसके सामने गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या कहना चाहते हैं आप? जो भी कहना है ठीक से बताओ हमें। अभिनव ने नरेंद्र और पल्लवी की तरफ देखकर कहा, आप दोनों को शादी के लिए एक लड़की चाहिए ना, जिससे हमारी शादी हो सके, ताकि हम यहाँ के राजा बन पाएं, और आप लोगों की शर्त और नियम के हिसाब से जब तक मैं शादी नहीं करूँगा मैं राजा नहीं बन पाऊँगा, है ना? नरेंद्र ने उसकी बात सुनकर धीरे से अपना सिर हिलाया। तभी अभिनव ने कहा, तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए एक लड़की लेकर आया हूँ, अगर आप लोग उससे मेरी शादी करवा देंगे तो आप लोगों की प्रॉब्लम झट से सॉल्व हो जाएगी। उसकी ये बात सुनते ही पल्लवी ने कहा, कौन सी लड़की? क्या आप किसी लड़की से प्यार करते हैं? नरेंद्र उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था। अभिनव ने भी पल्लवी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने दरवाजे के बाहर जाकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक लड़की का हाथ उसके हाथ पर आया। अभिनव ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ पल्लवी और नरेंद्र के कमरे में लेकर आ गया। जैसे ही पल्लवी ने उस लड़की को देखा, उसने बहुत ही लूज चेक्ड शर्ट पहनी हुई थी। उसके बाल लाइट ब्राउन कलर के थे, जिन पर उसने हाईलाइट करवाया हुआ था। उसने अपने उन बालों को बिल्कुल मैसी तरीके से जुड़ा बना रखा था। उस लड़की की नाक में पियर्सिंग थी और उसने अपने हाथ में मोती की चेन वाली ब्रेसलेट पहनी हुई थी। स्किनी जीन्स के साथ वो लड़की किसी भी शाही घर की तो नहीं लग रही थी। वो दिखने में नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली की लग रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभिनव उन्हें मिला था। उस लड़की के कपड़े और पहनावे को देखकर पल्लवी का तो जैसे बिल्कुल मुंह ही बन गया। वो लड़की उनके सामने आकर अभिनव के बगल में खड़ी हो गई। उस लड़की के सामने आते ही वहीं खड़ा नरेंद्र भी उस लड़की को घूरते हुए ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उस लड़की की आंखें ब्राउन कलर की थीं और उसने ज्यादा मेकअप नहीं किया हुआ था। नरेंद्र उसकी तरफ देखते हुए बोला, अभिनव, आर यू श्योर आप इस लड़की से शादी करना चाहते हैं? अभिनव ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और वो लड़की मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देख रही थी, बल्कि उसकी नज़रें उन दोनों पर कम लेकिन उनके कमरे पर ज्यादा थीं। वो चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाते हुए उस कमरे के इंटीरियर और एक्सपेंसिव सामान को देख रही थी। अभिनव ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, कनिका, यही हैं वो दोनों जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। कनिका ने उन दोनों की तरफ देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो, आई एम कनिका, नाइस टू मीट यू। नरेंद्र ने धीरे से अपना सिर हिलाया और पल्लवी अभी भी उसे बड़ी ही जजिंग नज़रों से देख रही थी। जब कनिका ने देखा कि उन दोनों में से किसी ने भी उसके साथ हैंडशेक नहीं किया तो उसने भी अपना हाथ पीछे कर लिया। पल्लवी ने नरेंद्र के कान के पास जाकर धीमी आवाज़ में कहा, मुझे ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, ये लड़की अभिनव के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, हम इसे अपने घर की बहू कैसे बना सकते हैं? नरेंद्र ने पल्लवी को गुस्से से घूरते हुए देखा और कहा, चुप करिए आप पल्लवी, अगर आप इसे अपने घर की बहू नहीं बनाएंगी तो किसे बनाएंगी? हमें कोई रिश्ता मिल भी रहा है अभिनव के लिए, और अभी अगर वो इस लड़की को लेकर यहाँ पर आया है तो हमें नहीं लगता हमारे पास और कोई भी ऑप्शन है, हमें अभिनव की बात माननी ही होगी। अभिनव और कनिका दोनों एक दूसरे की तरफ बड़ी हैरानी से देख रहे थे। तभी कनिका धीरे से अभिनव के कान के पास जाकर बोली, पार्टनर, मुझे नहीं लगता तुम्हारे ये माँ बाप मुझे एक्सेप्ट भी करेंगे। अभिनव उसकी बात सुनकर शैतानियत से मुस्कुराते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, अभी फ़िलहाल इनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये हमारी बात ज़रूर मानेंगे। कनिका ने खुश होते हुए कहा, चल, तेरा कॉन्फिडेंस देखकर तो मुझे अच्छा लग रहा है, अगर एक बार तुम यहाँ के राजा बन गए तो सच में हमारी तो मज़े हो जाएगी, और फिर हमने जो सोचा है हम वही करेंगे। अभिनव ने भी उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछने वाली बात है भला।
अभिनव ने देखा पल्लवी और नरेंद्र आपस में बात कर रहे थे। तभी वो आगे आते हुए बोला, ठीक है, आप लोग आराम से डिस्कशन कर लीजिए, जैसा हो मुझे बता दीजिएगा। इतना बोलकर अभिनव ने कनिका का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वो सीधे घर से बाहर निकल आया। रात को डिनर करने के बाद अभिनव और कनिका वापस जा रहे थे। तभी पल्लवी और नरेंद्र बाहर निकले और नरेंद्र ने कहा, अभिनव कहाँ जा रहे हैं आप अभी? अभिनव ने जैसे ही नरेंद्र की बात सुनी उसने कहा, मैं कनिका को वापस घर छोड़ने जा रहा हूँ। तभी पल्लवी नरेंद्र के पास आई और उसने कनिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है इसे कहीं ले जाने की, और वैसे भी अब तो ये हमारी होने वाली बहू बनने वाली है, तो ये यहीं रहेगी। इतना बोलकर पल्लवी ने कनिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, आओ कनिका, तुम मेरे साथ आओ। कनिका अभिनव की तरफ देखने लगी। अभिनव ने अपनी पलकें झपकाकर उसे पल्लवी के साथ जाने के लिए कहा। कनिका भी पल्लवी के साथ वहां से चली गई। तभी नरेंद्र ने अभिनव का हाथ पकड़ते हुए कहा, आप ही अपने रूम में जाइए और कल सुबह जल्दी उठ जाना। अभिनव ने ओके बोला और वो चुपचाप अपने रूम में चला गया। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में इप्सिता, नंदिनी और उदय अपने जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी पैकिंग करने के बाद उदय नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, नंदिनी मॉम हमारे साथ उदयपुर नहीं चलेगी क्या? नंदिनी ने कहा, एक्चुअली मॉम को थोड़ा काम है और परसों उन्हें एक यूट्यूब इवेंट में भी जाना है, तो शायद वो अभी हमारे साथ ना चले, लेकिन हाँ हो सकता है अगर उन्हें टाइम मिला तो शायद वो कुछ दिनों बाद वहाँ आ सकती हैं। उसकी बात सुनकर उदय ने कुछ नहीं बोला। वहीं इप्सिता अपने रूम में थी और उसने भी लगभग अपनी सारी पैकिंग कर ली थी। वो बेड पर जैसे ही आकर बैठी उसका फोन बजा। उसने अभिमन्यु का कॉल देखकर जल्दी से कॉल पिकअप करते हुए कहा, हेलो अभिमन्यु, आप इतनी रात तक जाग रहे हैं, सोए क्यों नहीं? अभिमन्यु ने थोड़ा सा फ्लर्ट करते हुए कहा, आपसे बिना बात किए भला हमें नींद आ भी सकती है इप्सिता? अभिमन्यु की ये बात सुनकर इप्सिता मुस्कुराने लगी। तभी अभिमन्यु ने कहा, बस करिए, इतना ब्लश मत करिए वरना आपके गाल लाल हो जाएंगे। इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर थोड़ी शॉक हुई। उसने थोड़ा इतराते हुए कहा, हम कोई प्रश्न नहीं कर रहे, आप बेकार में ही ये सब सोच रहे हैं। खैर ये बताइए, आपने अपनी पैकिंग कर ली क्या? हम सब साथ में उदयपुर चलने वाले हैं ना?
अभिमन्यु ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्या आपको अभी भी लगता है कि हम आपको यहाँ छोड़कर जाएंगे? हमने आपसे पहले ही कहा था कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं रखना चाहते। किस तरह हम अभी यहाँ पर आपसे दूर हैं ये तो बस हमारा दिल ही जानता है। अभिमन्यु की बातें सुनकर इप्सिता काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी, लेकिन उसने अपनी ये खुशी जाहिर नहीं की, वो बस मन ही मन मुस्कुराती जा रही थी। काफ़ी देर बात करने के बाद इप्सिता ने कहा, कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, हमें शायद सो जाना चाहिए। अभिमन्यु ने कहा, हाँ कल के लिए तो हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, कल फाइनली। अभिमन्यु इतना बोलते बोलते चुप हो गया। तभी इप्सिता ने कहा, अच्छा चलिए, अब आप और बातें करने का बहाना मत ढूंढिए, कॉल कट करिए और हम सोने जाते हैं। अभिमन्यु ने कॉल कट की और तुरंत वीडियो कॉल कर दी। इप्सिता ने अभिमन्यु की वीडियो कॉल उठाने से पहले अपने बालों को ठीक किया और वो ठीक से बेड पर बैठते हुए उसकी वीडियो कॉल को रिसीव करते हुए बोली, हमने आपसे कॉल कट करने के लिए कहा था, वीडियो कॉल करने के लिए नहीं। अभिमन्यु ने कहा, आपका चेहरा देखने का मन कर रहा था इसीलिए कॉल किया, अब हमें थोड़ी अच्छी नींद आएगी। इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाने लगी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर अभिमन्यु ने कहा, देखा हमने कहा था ना, आप हमारी बातों से ब्लश करती हैं, लेकिन आप ये बात मानती नहीं हैं। इप्सिता ने अपने चेहरे की मुस्कुराहट को रोका और वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, किसने कहा आपसे कि हम ब्लश कर रहे हैं? हम ब्लश नहीं कर रहे हैं, बस आपकी बातें सुनकर हमें हंसी आ रही है और कुछ नहीं। अभिमन्यु ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हम यहाँ पर इतनी सीरियस बातें कर रहे हैं और आपको हंसी आ रही है? इप्सिता ने कहा, अच्छा जल्दी, बस देख लिया ना चेहरा, अब आप फ़ोन रखिए। अभिमन्यु ने कहा, इतनी क्या जल्दी है, आप हमें एक गुड नाइट किस तो दे दीजिए, फिर हम कॉल डिस्कनेक्ट कर देंगे। इप्सिता ने जैसे ही ये बात सुनी वो अभिमन्यु को घूरते हुए बोली, जस्ट शट अप, अभी मैंने कुछ भी बोला नहीं, आप चलिए फ़ोन रखिए। अभिमन्यु ने बड़े ही प्यार से छोटे बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा, प्लीज़ ना इप्सिता, दे दीजिए हमें एक प्यारी सी किस। इप्सिता ने अपना सिर झुकाकर कहा, नहीं कोई किस नहीं मिलेगी आपको, चलिए अब आप हमें परेशान करना बंद करिए और सो जाइए, गुड नाइट। इतना बोलकर इप्सिता ने कॉल कट कर दिया। वहीं जैसे ही कॉल कट हुआ अभिमन्यु भी मुस्कुराने लगा। इप्सिता ने अपना फ़ोन साइड में रखा और वो आराम से बेड पर लेट गई।